لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وأصحابه الطيبين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے صوفی کانفرنس کے اسٹیج پہ جلوہ افروز حضرات نے، خصوصاً بہت سے ایسے حضرات ہیں جن سے پہلی بار مل رہا ہوں، ان کے اسماء گرامی تو جانتا نہیں ہوں، جنیدی صاحب اور ہمارے فرقان صاحب سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، اور دیگر ہمارے حضرات جو موجود ہیں اور سامعین حضرات، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مشہور شعر شاعر ہمارے صوفی سلیم ہزاری قبلہ کے لیے موضوع گزرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے. ان آندھیوں میں چراغ صوفیان کرام کے چراغ، صوفیان کرام کے عقائد کے چراغ، عشق و محبت کا چراغ جلائے ہوئے ہیں. بٹ سیونتھ فنکشن از گوئنگ آن دس اپ ٹوڈے، یعنی 147واں جلسہ ہونے جا رہا ہے. میں بہت تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور آپ کے خدمات کو، اور بنگلور کے شاخین حضرات کو کہ ہر مہینہ آتے ہیں، وقت نکال کر آتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں اور اخلاص و محبت اس راستے صوفیان کرام کے راستے کے تحت پیدا فرمائے، میں دعا گو ہوں، اللہ قبول فرمائے. آج کے حالات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، تھوڑا میں عالمانہ لہجے میں نہیں بولوں گا، مذاکرات کے لہجے میں بات کروں تو اچھا لگے گا، سمجھ میں آتی ہے بات؟ درمیان میں اگر کوئی بات مجھے روک کر بھی پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکتا ہے. جس اس مذاکرات آج کے حالات پر جب ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں دنیا کے عالمگیر حالات، حیرت انگیز حالات سے ہم گزر رہے ہیں، قوم گزر رہی ہے، یہ قوم کے حالات ایسے کیوں بھی ہیں؟ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، جب تمہارے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو ہم تم پر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. اب اعمال سے مراد کیا ہے؟ عمل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل وہ جو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہمارا رویہ سے ظاہر ہوتا ہے، صدقات سے، خیرات سے، حسنات سے، خدمات سے ظاہر ہوتا ہے. ایک عمل صالح ہے جسے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کمی آ جاتی ہے، ہم اس مرکز سے بچھڑنے لگتے ہیں، اسے عمل صالح کہتے ہیں. کیونکہ یہی عمل درود کی شکل میں، جیسے آپ نے بتایا، اللہ اور اللہ کے فرشتے یہی عمل دہراتے ہیں کہ درود، اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، لہذا آئے ایمان والو تم درود و سلام بھیجو. یہ عمل صالح ہے جو فرشتے اور اللہ خود کر رہا ہے. تو ہمارے عمل صالح میں کمی آئی ہے کہ ہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ہٹ چکے ہیں. تو یہ حالات شاید مسجدیں بہت زیادہ ہو گئی، علامہ اقبال کے مطابق مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم और जगह फरमाते हैं। अब होम का सवाल आता है, मैं अपने मौजू पे आने से पहले, अभी मुझे नहीं मालूम कि किस मौजू पे बोलना है, जब हमारे सूफी साहब कहेंगे उस मौजू पे मैं बोलूँगा। अल्लामा इकबाल एक आइडियल है होम के लिए, एक आइडियल पर्सनैलिटी है, वो एक मैसेंजर थे होम के, पैगामी शायर थे। तो खौम की बात आई तो उन्होंने फरमाया, खौम क्या चीज है, खौमों की इमामत क्या है, खौम क्या चीज है, खौमों की इमामत क्या है, कैसे इस बात को समझेंगे दो अरकात के इमाम। क्या आज वही हो रहा है, खौम क्या चीज है, कौन इमामत कर रहा है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, कैसे इस बात को समझेंगे दो रकात के इमाम। आज ये कौम का जवाल ये दो रकात के, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कौमों की इमामत को हमने नहीं समझा, कौम को ना समझा, कौमों की इमामत को ना समझा, और ये दो रकात के इमाम समझना भी ना सके, वो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। फिर एक जगह और कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है उनकी बातों को याद करना या दोहराना, वो एक सूफी थे, खैर उन पे फतवे दिए होंगे, हर एक सूफी पे फतवा दिया है, जिनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फकीह आजम थे, मुफ्ती आजम थे, जिन पे 12,000 फतवे आ गए थे। ये दुनिया ने किसको छोड़ा है, ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने मेहराब मस्जिद पर, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये मिसरा लिख दिया, ये मिसरा जस्ट फर्स्ट लाइन, ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने, चंचल इंसान है, ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़यामत, क्या खड़े होने का वक्त आ गया था, ये नादान सजदे में गिर गए, तो खड़ा होना चाहता, वक्त क़याम की दावत दी थी उन्होंने, ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, चलो तबलीग करें, चलो मस्जिदें बना लें, चलो मदरसे बना लें। आज आलमगीर हालात पर नजर डालते हैं तो हैरत होती है, कौम और कौमों की इमामत कहाँ गए वो इमाम। फरमाइएगा फिर बोलना है मुझे, अभी क़िबला ने बोला फिर भी बोल दूँ, एक बार दुरुशी का नजरा बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक ऐ लोगों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने बैयत किया उसने अल्लाह से बैयत कर लिया, क्योंकि उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। ठीक है, अल्लाह यहाँ पूरा कुरान अपने महबूब से खिताब फरमाता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाता है। अब यह आयत करीमा क्या है, जरा गौर करें, यह कुरान का हुक्म है, हुक्म खुदा क्या है, खालिल्लाह है ना, पूरा कुरान अल्लाह के अहकाम है, पूरे कुरान में अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह का हुक्म फर्ज है, मालूम हुआ कि बैयत करना फर्ज है, ये मुस्तहब नहीं है, क्योंकि अल्लाह हुक्म दे रहा है, मेरे महबूब ने जिससे बैयत लिया है वो दरअसल मुझसे बैयत किया है, क्योंकि मेरे महबूब के हाथ पर अल्लाह का हाथ है, मेरा हाथ है। तो अजरू ये कुरान मालूम हुआ कि बैयत करना हर इंसान पर वाजिब वाजिब बमानी फर्ज है, मुस्ताहबी नहीं है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से बैयत लिया, सहाबा कराम ने बैयत किया। पूरा कुरान हर और कुरान की हर आयत फर्ज है, अल्लाह का एहकाम फर्ज है, खाल अल्लाह फर्ज है, खाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है, उसे अहादीस करीमा कहते हैं। और खाल अल्लाह को कुरान कहते हैं, अल्लाह के अख्वाल को कुरान कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्वाल को अहादीस करीमा कहते हैं। तो कुरान को समझा कैसे जाए सवाल आता है। हर कोई कुरान का वास्ता देता है, हर कोई कुरान का हवाला देता है। कुरान अल्लाह की किताब है जो अपने महबूब के लिए उतारा और महबूब को इल्म सिखाया, उसकी तशरीहात का, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम कुरान है और अहादीस करीमा का नाम भी कुरान है। तशरीहात हैं कुरान के, तशरीहात हैं, अहादीस करीमा के बगैर हम कुरान को नहीं समझ सकते। तो कुरान फरमाता है कि बैयत करना फर्ज है, अब किसके हाथ में बैयत करें सवाल आता है। सबसे पहले तो आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैयत लिया, वो सहाबा कराम खराब दिए गए। आप पे जब मुकम्मल कुरान नाजिल हुआ, कुरान की हर आयत फर्ज थी, कुरान का हर हुक्म फर्ज है, अल्लाह का अहकाम फर्ज है, जो फरमाया वो फर्ज है। तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैयत लेने से पहले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुरान से वो चीज़ें अर्ज करते गए। हालांकि तमाम सारा कुरान और हर आयत हर हुक्म हम सब पर फर्ज है, उसमें से बुनियादी पांच चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुन लिया। लाए पांच अरकान, अरकान इस्लाम जिसे कहते हैं, वो पांच बुनियादी चीजें चुनी आपने और अल्लाह ने पसंद फरमाया। कुरान में नाजिल था, पहला रुकन है कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये कुरान में पूरा कलमा आया है क्या कहीं? नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह एक जगह आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तरतीब दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह को जोड़कर कलमा दिया, तब कहीं ये कलमा पढ़ने लगे और उसी कलमे को इस्लाम की बुनियाद बनाया। यानि अल्लाह को भी मानना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना, ये दोनों मुतबर्रिक हस्तियां इस कलमे की बुनियाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ मानना, ये आप क्या है का मानने से मुराद क्या है? अल्लाह को मानना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, मानना बिना देखे भी मानना हुआ, सुनकर भी मानना हुआ, देख कर भी मानने वाले हैं, जान कर भी मानने वाले हुए, पहचान कर भी मानने हुए, मानने वाले हुए, इनमें दर्जात पैदा हो गए। एक सुनकर मानने वाला हुआ, एक जानकर मानने वाला हुआ। जैसे अल्लाह को जानने के लिए इसे तौहीद-ए-गलाली कहते हैं, बाकी दुनिया की तरफ हम नजर डालते हैं, ये पेड़ पौधे शजर हजर जो कुछ नजर आता है, इसका क्रिएटर कोई है? ये अगर क्रिएशन है, ये पैदा किया है हम सब हैं, तो हमारा खालिक भी कोई है। तो वो देखकर जानता है, तो ये तौहीद इस्तिदलाली कहते हैं इसको, है कोई मानता है, जानता भी है मानता भी है। उनमें एक तबका ऐसा है जो पहचान कर मानता है। तो यहां बात बैयत से चल निकली थी, अल्लाह ने बैयत को फर्ज करार दिया। और मैं यहां आपको एक बात वाजा कर दूं कि कुरान की हर आयत में, जहन में दोबारा कह रहा हूं कि हर हुक्म फर्ज है, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को उस वक्त के शरीर लोगों ने कोर्ट में, उस वक्त के बादशाह के दरबार में पहुंचा दी। पांच उन पर इल्जाम आयद थे, उसमें की एक इल्जाम की बात करता हूं, वक्त वरना जाया हो जाएगा। एक इल्जाम ये भी था आप पर कि आपने शादी नहीं की, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह मेरी सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, आपने शादी क्यों नहीं की? बादशाह का काजी ने पूछा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने निकाह क्यों नहीं किया? तो आपने फरमाया सुन्नत अफजल है या फर्ज अफजल है? जवाब दिया, बोला फर्ज। क्यों? क्योंकि फर्ज अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत नबी का हुक्म है, मैंने अल्लाह के हुक्म पर अमल कर लिया, इसलिए निकाह नहीं किया। दलील पेश करो, खाजी ने पूछा दलील पेश करो, तो आपने दलील पेश किया, इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद दोनों फितने हैं, अगर मैं शादी कर लेता तो माल को भी जमा करना पड़ता और औलाद हो जाती तो फिर फितनों में मुब्तला हो जाता, इसलिए मैं फितनों से महफूज हो गया। अल्लाह का हुक्म है कि फितनों से महफूज रहो, मैं फितनों से महफूज रहा, मैंने फर्ज पे अमल कर, अल्लाह के हुक्म पे अमल कर लिया, सुन्नत को छोड़ दिया, फर्ज पे अमल कर लिया। मालूम हुआ कि हर आयत फर्ज है। अब अल्लाह ताला, जैसे कि आपने फरमाया, इस दीन को मुकम्मल करने के लिए पहले कलमे को दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कैसे पढ़े, नमाज कैसे पढ़े, ये अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था, बताया था, आप जानते थे नमाज कैसे पढ़े, तो आप नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क़याम में क्या पढ़ना चाहिए, रुकू में क्या पढ़ना चाहिए, सजदे में क्या पढ़ना, सजूद में क्या पढ़ना, ये सब कुछ क्या है ना अकायद, जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज ऐसे पढ़ी जाए, जबकि ये भी फर्ज है। ये दूसरा, उसके बाद रोजा, रोजा कैसे रखें, कब से कब तक रखें, क्या भूख और प्यास को से रुक जाने का नाम रोजा है या पूरे वजूद पर रोजा वाजिब है? ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताया। उसके बाद ज़कात का हुक्म बारहा आया, तो ज़कात की तरकीब, ज़कात किस पर वाजिब है, कितनी वाजिब है, मुस्ताकीन कौन है, लवाकीन कौन है, कुरान से ही अर्ज करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ये भी फर्ज हुआ। फिर आया पांचवा फर्ज हज, हज कैसे करें। अब हज के बारे में अगर कुरान में तलाश करते हैं तो वो तरकीब नहीं है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अब जो हम आज करके आ रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कब क्या पढ़ा जाए, कहाँ कितनी नमाजें पढ़ी जाए, हज को जाने के जो जाकर आए जानते होंगे, ये सब कुछ चीज़ें कुरान के अंदर नहीं हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्योंकि अहादीस करीमा क्या है, कुरान की तशरीहात हैं, कुरान को समझना इतना आसान नहीं जब तक हम आदमी से करीमा को नहीं समझ सकते। तो आपने बताया ये पांच फर्ज चुनकर बताए कि अगर किसी को इस्लाम कबूल करना है तो कम से कम इन पांच फराइज पर अमल करना होगा। उसके बाद सारा कुरान फर्ज है, हर हुक्म फर्ज है। अब हर हुक्म पे अमल करने के लिए फिर जब मुसलमान बन जाता है कबूल करके बंदा, तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लहून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ पीरे कामिल का वसीला तलाश करो ताकि वो तुम्हें उसके रास्ते में जद्दोजहद करना सिखाए, उसके बाद मुमकिन है तुम कामयाब हो जाओ। ये कामयाबी क्या है? अल्लाह खुद हुक्म कर, ये फर्ज हुआ ना, इस्लाम मुकम्मल, इस्लाम यहाँ कबूल को किया, तो पांच चीजें बुनियादी हैं जो हमारी जिंदगी में इसको लाई गई हैं, वरना पूरा कुरान फर्ज है, हर हुक्म फर्ज है। तो अब यहाँ पीर का करना फर्ज करार दिया। आए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अल्लाह क्या डरने की चीज है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह डरने की चीज है? नबी, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की नाफरमानी से डरो। इसका माना क्या है? ऐ ईमान वालो, ऐ इस्लाम वालो नहीं कह रहा अल्लाह, ईमान वालों से मुखातिब, क्योंकि तुम ये पांच चीजों को मान चुके हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान चुके हो, इस्लाम में आ चुके हो, इस्लाम में आने के बाद ईमान तो नेक्स्ट सेकेंड स्टेज पे आ गए। तो ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमा रहा है ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह की नाफरमानी से डरो और उसकी तरफ उससे मिलने के लिए, उसकी कुर्बत के लिए, अपने अल्लाह रब की कुर्बत के लिए वसीला तलाश करो, जो पीरे कामिल हो उसका वसीला तलाश करो, जो तुम्हें खुदा के करीब ले चले जाए, उसकी कुर्बत हासिल हो जाए, तब कहीं जाकर मुमकिन है तुम कामयाब हो जाओ, यानी अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो जाओ। ये भी फर्ज है भाई, तो मालूम हुआ कि पीर का करना फर्ज हो गया। अब चलिए दूसरे रुख की तरफ देखते हैं। अब आखाए दो जहां सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अर रफीकु सुम्मा करीम, हदीस पाक में आता है, पहले अल्लाह के दोस्त को तलाश करो फिर रास्ता चलो। क्या फरमाते हैं? क्या हो रहा है? अर रफीकु सुम्मा करीकु, पहले अल्लाह के दोस्त को तलाश करो फिर रास्ता चलो। यहां तलाश का हुक्म दिया गया, तो अल्लाह का दोस्त तलाश के क्यों? सब बहुत से दोस्त मिल सकते थे ना, बहुत से लोग दावा कर सकते हैं हम अल्लाह के दोस्त हैं, हर मुसलमान अल्लाह का दोस्त है, दुश्मन तो नहीं। मगर खुसूसी तौर पर तंबीह की गई अल्लाह का वो दोस्त जो अल्लाह का मुकर्रब हो, जो अल्लाह को पहचानता हो, उस दोस्त को तलाश करो फिर रास्ता चलो। फिर दूसरी जगह इरशाद फरमाया तुम्हारा पीर अपने मुरीदों में रसूल के मानिंद होता है। क्या होता है? यहां अल्लाह फरमा रहा है कि बैयत करो, ये फर्ज है, मेरी कुर्बत अगर चाहते हो, मेरे करीब आना चाहते हो तो तुम्हें बैयत करना होगा। यहां फर्ज करार दिया किसे? ईमान वालों को। इस्लाम तो ला चुके हैं, अब ईमान अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें बैयत करना होगा। अल्लाह क्या फरमा रहा है? पांच अरकान को मान लिया, कलमा पढ़ लिया, सब कुछ हुआ, इस्लाम लाया, अब ईमान वालों को डरा रहा है, मेरी नाफरमानी से डरो और तुम पहले बैयत करो और उसके रास्ते में मैं कोशिश करो वो कराए ताकि तुम फलाह पा जाओ, यानी कामयाब हो जाओ। कामयाब यानी अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओ, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुम्हारा पीर अपने मुरीदों के दरमियान रसूल के मानिंद होता है। सुभान अल्लाह। तो पीर को सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल अमल करना होगा और आपकी सीरत के मुताबिक चलना होगा। क्या वो रसूल के मानिंद अगर पीर है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, मनाकिब रूमी एक किताब है, इंटरनेट से निकाल, चाहे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, दूसरे देश में प्रिंट भी है, पड़ोसी देश में, चाहे तो निकाल कर पढ़ सकते हैं। मनाकिब रूमी, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पीर अपने वक्त का नबी होता है, अपने वक्त का नबी होता है। ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कौल, यानी मेरी नजर में नबुवत के ज़ेर क़दम होता है, नबुवत के ज़ेर क़दम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा था, जो मिशन था, जो मकसद था, उसकी तकमील में लगने वाला होता है। ठीक है, फिर पीर की अहमियत के ताल्लुक से आखाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पीर का दीदार अल्लाह का दीदार है। क्या? पीर का दीदार अल्लाह का दीदार है। एक पहली जगह फरमाया तुम्हारा शेख अपने मुरीदों के दरमियान रसूल की मानिंद होता है, दूसरी जगह फरमा रहे हैं पीर का दीदार अल्लाह का दीदार है। तो मालूम हुआ कि पीर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों जातें पीर में जमा, कामिल में जमा होती हैं। उसको देखना अल्लाह और अल्लाह के रसूल। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा है पीर कामिल की पहचान क्या है, तो एक आसान नुस्खा बताया है कि जिसको देखकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल याद आ जाए। यह हदीस से ताल्लुक रखता हुआ मजमून है। ठीक है, तो मालूम हुआ कि पीरी मुरीदी फर्ज है और सुन्नत भी है, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन किया है, बैयत लिया है, लोगों को बैयत दिया है। मक्का में 23 साल तक तबलीग करते रहे। मक्का के लोग बड़े कठिन थे, सख्त मिजाज के लोग, तंग मिजाज के लोग, जालिमाना फितरत के लोग। 23 साल तबलीग किया मक्का में, 13 साल, हाँ 13 साल रहे नबूवत के बाद में, 13 साल तबलीग किया। मक्का उस वक्त मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, 10 लाख की आबादी थी मक्का की आबादी, कितनी दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं था जितनी आबादी मक्का में थी। वो खुद को इतने पढ़े लिखे लोग समझते थे, दूसरों को अजमी यानी गूंगे बहरे कहते थे। ऐसे लोगों के दरमियान जब इस्लाम को पेश किया गया, 10 लाख की आबादी में सिर्फ 600 लोग मुसलमान हुए। कितने? 13 वर्ष में 600 लोग इस्लाम कबूल किया। फिर मदीना गए तो लाखों बन गए, अलग बात है। उनके मिजाज में नदमियत थी, सदाकत को कबूल करने का अल्लाह ने मादा रखा था, तो वहां मिले। बाहर गए पीरी मुरीदी, बैयत करना, बैयत करना फर्ज भी हुआ, बैयत करना सुन्नत भी हुआ, तो इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो। क्योंकि अल्लाह ने आए ईमान वालों कहा है वसीला तलाश करने, किसके लिए आए? इस्लाम वालों नहीं कहा। अगर तुम ईमान रखते हो तो बैयत करो। अब बैयत वालों के को गालियां देने वाले बहुत हैं, पीरी मुरीदी को हकारत से देखने वाले बहुत हैं, पीरी मुरीदी को हराम करार देने वाले बहुत हैं, ये सऊदी के दलाल बहुत हैं, रियाल के दलाल बहुत हैं, जो पीरों की तौहीन करते हैं, उनकी तरफ ध्यान न दीजिएगा। अब बैयत किससे करें, कौन करें, किस पर वाजिब है बैयत करना? क्या हर मुसलमान पर वाजिब है? अल्लाह हुक्म दे रहा है, बेशक ईमान वालों को दे रहा है। अब ईमान वाला किसे कहते हैं, समझने का नुक्ता यह है कि ईमान वाला किसे कहते हैं। अब हमें कुरान को से पूछना होगा कि ईमान वाला किसे कहते हैं। अब कुरान कहता है अतीउल्लाह वअतीउर रसूल वउलिल अम्र मिनकुम, اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں صاحب امر حضرات ہیں ان کی اطاعت کرو. یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے احکام پر عمل کرو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہو